ओम शांति। तो आज का टॉपिक है निराकारी निरंकारी निर्विकारी। हमें सबसे पहला लेसन मिला हम आत्मा हैं। आत्मा निराकार है, इस शरीर धारण किया है पाठ बजाने। तो अभ्यास करते करते आत्मा और शरीर को बिल्कुल अलग समझना है। और आत्मभान में रहकर चलना फिरना घूमना फिरना ये कर रहा है। देह का भान बिल्कुल ना रहे, देह के तरफ दृष्टि ना जाए। क्योंकि 63 जन्म से देहभान में रहने की आदत हो गई है। जब देहभान में है तो हम क्या करते हैं, जो भी सामने आता है उसके शरीर के रंग रूप क्या श्रृंगार किया है, कैसे कपड़े पहने हैं, बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। जब आत्मभान में रहते हैं अंतर्मुखी होकर रहते, बाह्य चीजें आकर्षण नहीं करे, बुद्धि को ना खींचे और शरीर को न देखें। क्या है कि आजकल देहभान में रहने वाले क्या करेंगे, शरीर को श्रृंगारेंगे और रास्ते में जाते जाते उनकी नजर कहां जाएंगी, शोकेस, कौन सा लेटेस्ट कलर के कपड़े हैं, कौन सी लेटेस्ट डिजाइन है, कौन से आभूषण है, जो भी शोकेस है नजर जाएंगे। और कई बार जरूरत नहीं है, घर में कई चीजें पड़ी है पर नई चीज देखकर सोचेंगे खरीदे। और आजकल तो फैशन है शरीर पतला हो, पतली कमर हो, तो इसलिए जिनका मोटा शरीर होता है ना वो डाइटिंग करेंगे, वजन करेंगे अपना, और वजन करके करके खाना खाएंगे। इतनी ही कैलोरी चाहिए, इतना ही खाना चाहिए आदि आदि। तो अपना समय संकल्प धन सब शरीर पर खर्च करते हैं और दुनिया वाले क्या चाहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी क्या चाहते हैं वो देखेंगे कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी लोग क्या कहेंगे। तो अपनी चॉइस नहीं देखेंगे, लोग क्या एप्रिशिएट करेंगे, क्या उसकी सराहना करेंगे, उसके ऊपर उनका ध्यान होगा और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और औरों का टिक्का टिप्पण करेंगे, चिंता करेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। जो देही अभिमानी है स्वमान में रहते हैं, उनको आत्मविश्वास रहता है, अंतर्मुखी रहते हैं और उदार चित रहते हैं। उन्होंने अपने आप को जो है जैसा है स्वीकार किया है। वो सादगी में रहते हैं, चिंता नहीं करते, हर्षित चेहरा होता है, संतुष्ट रहते हैं, तो इसलिए चलते फिरते निराकारी आत्मा हूं, बिंदु हूं, इस स्मृति में रहो। निराकारी स्थिति में ब्रह्मा बाबा भी निराकारी फरिश्ता स्थिति में रहते थे और आज भी सवेरे बताया कि जब देह भान में आते हैं पवित्रता नहीं रहती। आत्मा भान में रहने से निर्विकारी सहज रह सकते हैं और चेहरे चलन में चमक होती है। आत्मा का निजी संस्कार पवित्रता, शांति, आनंद, ये हमारा निजी संस्कार है, तो इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए सदैव आत्मभान में रहने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा है निरअहंकारी रहना, निराकारी निरअहंकारी। जो निरअहंकारी है, नम्र है, वो हरेक को सम्मान देता है और हरेक के साथ स्नेह और सहयोग से चलते हैं। क्योंकि जिनका अहंकार होता है ना, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे ज्यादा, वो समझेंगे कि हमको सब मान देवे। यदि कोई मान नहीं देता है तो वो अपसेट हो जाता है। तो निरंकारी है, हर एक के साथ एकता में रहता है और संस्कारों की हार्मनी रहती है। सो मैं पना नहीं रहता है। क्या होता है कि जो अहंकारी है ना, मैं ऊंच कुल का हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं बॉस हूं, मैं धनवान हूं, तो उसमें जो भी हो सकता है विशेषता है, पर उसका अभिमान है। तो हो सकता है कि हमारे में कुछ न कुछ विशेषता हो, कोई गाने में होशियार हो, कोई खाना पकाने में होशियार हो, कोई सफाई में होशियार हो, तो हो सकता है लोग हमारी सराहना करें, प्रशंसा करें। तो जो निरंकारी है वो चाहे शब्दों में बोले ना बोले, पर मन में समझता है कि ये हमको बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा के कारण हम प्रशंसा योग्य बने हैं, सराहनीय बने हैं। तो समझदार है वो निरंकारी रहेगा। ज्ञान जिसने जीवन में उतारा है ना, निरंकारी रहेगा, वो दूसरों को आगे रखेगा। जो अहंकारी है वो समझेगा मैं ही सब कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो वो अपने को आगे रखता है हमेशा, भाषण में मैं करूंगा। सबके सामने मैं जाऊंगा, पर जो निरंकारी है कहेगा आप जाओ। ब्रह्मा बाबा कितना निरंकारी था, बच्चों को नमस्ते करता था, बच्चों को नहीं कहता था कभी पांव को छुओ या नमन वंदन करो। जो अहंकारी है वो अपनी ही बात करेगा, मैं जो कहता हूं सच है, और जो निरंकारी है सबकी बात सुनेगा, फिर निर्णय करेगा। मतलब बालक और मालिक का बैलेंस रखेगा, बालक बनकर सबका सुनेगा और मालिक बनकर निर्णय करेगा। सो जो निरंकारी है वो सबसे मिलजुल कर काम कर सकता है और करा सकता है, उसको सब सहयोग भी देंगे। वो दूसरों की भावना को समझ सकेगा और दूसरों को सशक्त करेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा है, अभी भाषण करने नहीं गया, दूसरों को तैयार करता था, भाषण की पॉइंट्स देते थे कि जाकर ये बोलना, और जानकी दादी ने एक बारी मम्मा को कहा कि मम्मा मुझे भाषण करने के लिए बाबा कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं, पर मैं नहीं समझती हूं कि मैं इतना अच्छा भाषण करूंगी। तो मम्मा ने कहा नहीं नहीं तुम कर सकती हो, तुम्हारे में शक्ति है, तुम जाओ, बाबा मदद करेगा। तो मम्मा ने उनको प्रेरणा दी, कॉन्फिडेंस दिया, प्रोत्साहन दिया। तो जो निरंकारी है अपना विचार जरूर देंगे, परंतु बॉसी बन के नहीं कहेंगे इसको ऐसे ही करना है, नहीं। मिठास से कहेंगे कि मैं समझती हूँ ये करना अच्छा है, इससे फायदा होगा आदि आदि। फोर्स नहीं करेंगे कि यही करना है। और जो निरंकारी है वो ईमानदार रहेगा, अंदर बार एक रहेगा। जो अहंकारी है ना, अंदर एक होगा बाहर दूसरा दिखाएगा। अंदर कितना भी नर्वस होगा बाहर से फोर्स से बोलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को, निरअहंकारी बनो। तो कहा गया है जैसे वृक्ष है ना, जितने ज्यादा फल है तो उसकी डालियां है नीचे आएंगे। ऐसे जिससे हमारे में भी, हमारे में जितने गुण होंगे नम्र रहेंगे। और गुजराती में पहाका है नमे सौने गमे, जो नमन करता है उसको सब पसंद करते हैं। तो हमें सब विकारों पर मन वचन कर्म से और स्वप्न में भी जीत पानी है, क्योंकि पवित्रता हमारा धर्म है, हमें पवित्र बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो हमें देखना है कि विकारों का सूक्ष्म रूप भी ना हो। अभी काम विकार को तो सब मेजोरिटी ने जीता, परंतु काम विकार का जो सूक्ष्म रूप है प्रभावित होना, कि कोई भी किसी की भी विशेषता देख उससे प्रभावित होना। ज्ञान में भी हम देखेंगे कि हमारे में से कोई कोई ऐसे होंगे जो कहेंगे फलानी बहन जी और फलाना भाई जी है, बहुत अच्छा भाषण करता है, वो जो कराता है तो हमको तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, हम उड़ जाते हैं, हमको साक्षात्कार होता है। तो क्या है, कराने वाला बाबा, ज्ञान बाबा का योग में अनुभव कराना का काम बाबा का है, पर व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये भी सूक्ष्म काम विकार आकर्षण। ये तो बहुत अच्छा है, तो देह का आकर्षण हो सकता है, वस्तु वैभव का आकर्षण होता है। आज भी बाबा ने कहा कार का क्या आकर्षण हो, हमको तो कारों का खजाना मिलता है। तो मशीन आजकल माया के शो पंप बनना है, जो कहेंगे हमको तो कलर टीवी चाहिए, हमको तो बड़ा स्क्रीन चाहिए टीवी का, हमको तो मोबाइल फोन में सब कुछ फैसिलिटी चाहिए, 4G चाहिए, 5G चाहिए, 6G चाहिए आदि आदि। तो मशीनों की आकर्षण हो सकती है। तो रास्ते में चलते चलते देखेंगे कौन सा कार का मॉडल है और कौन सा काला कार का कलर अच्छा है, या मोटर बाइक कौन सी अच्छी है। जिनको जिस बात का शौक होगा तो रास्ते में भी देखते रहेंगे, फिर सोचेंगे हाँ कितने का है, कहाँ से लिया, क्या करना, कैसे पैसे कमाना आदि आदि। फिर काम विकार का एक रूप है फैमिलियरिटी, किसी से भी फैमिलियर रहता है। क्योंकि हम कहते हैं बाबा हमारा मित्र और कोई मित्र नहीं, परंतु जो फैमिलियरिटी वाले होंगे ना, कुछ भी बात होंगे फौरन उस व्यक्ति को फोन करेंगे, घंटे घंटे तक उस व्यक्ति के साथ फोन करते रहेंगे। तो बाबा को अपने सुख दुख की बात बजाए बगैर उस व्यक्ति को सुख दुख की बात बताएंगे, उससे राय लेंगे आदि आदि। तो फैमिलियरिटी भी ना हो, नाम रूप का प्यार, उस व्यक्ति का नाम बोलते रहे, खास पति पत्नी या माँ अपने बच्चों का, मेरा बच्चा ऐसा, मेरे बच्चे ने ऐसे किया, मेरे बच्चा पढ़ने में ऐसा होशियार है, इतना नंबर लाया, ये वो। और पत्नी अपने पति की सराहना करती रहेंगी, मेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरे पति ने ये किया वो किया। तो नाम उसका लेते रहेंगे तो रूप भी तो वही याद आएगा ना। तो राम 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 बोलने के बजाय उसका नाम। और काम विकार का सूक्ष्म रूप कामना, इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए, तो ये कामना भी ना हो, शुभ कामना ही हो, कोई भी वस्तु प्राप्त करने की कामना ना हो। तो कामना दोनों में आ सकता है, लोभ में भी आ सकता है, काम में भी आ सकता है। तो मन, वचन, कर्म और स्वप्न चारों में पवित्रता हो, दृष्टि वृत्ति उसमें देखना है कि हम औरों से ना आकर्षित होवे, प्रभावित होवे, और स्वप्न में भी अपवित्रता का ख्याल न हो। फिर है मोह विकार। बाबा कहते हैं प्यार सबसे हो, पर सबसे ज्यादा प्यार शिव से हो, बाप दादा से हो, लौकिक अलौकिक से प्यार हो, उनको सहयोग दो, पर उनके ऊपर आधारित ना हो, ना उनको अपने ऊपर आधारित करो। कई बार क्या होता है, पति पत्नी पर आधारित हो जाता है। चाय बनावे तब तो चाय पियो ना, खाना पकाए तो तभी तो खाना खाऊंगा ना। तो एक दो के ऊपर आधारित, पत्नी कहेंगे हाँ पति बिगर हमारा आजीविका कैसे चलेंगे, तब पत्नी पति पर आधारित हो जाती है। और यदि मर जाता है तो सारी दुनिया ही उनके लिए खत्म हो गई। बच्चे माँ पर, माँ बाप पर आधारित होते हैं, क्योंकि माँ ही खिलाती पिलाती पालना देती है। तो माँ से मोह हो जाता है और माँ का बच्चों से मोह हो जाता है, समझती है मैं ही तो बच्चों को खिलाएंगी पिलाएंगी ना, मेरे बिगर बच्चे कैसे बड़े होंगे। तो बाबा कहते हैं अपनी जिम्मेवारी निभाओ, माताएं खाना पकावे, घर सफाई करे, सब कुछ काम करो, पर मेरा पद न हो। मेरा पन आने से मुंह हो गया। देखो पड़ोसी का बच्चा बीमार होगा, नींद नहीं फीटेंगे, पर अपना बच्चा बीमार होगा, नींद फीट जाएंगे। सारा दिन सोचते रहेंगे क्या करें कैसे करें कहाँ ले जाएं क्या करें। बच्चा बीमार होगा, बेहोश होगा, उसको पता भी नहीं, और माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो मोह से क्या होता है, दुख लेते हैं। और मोह के कारण फिर उसके लिए पास खातरी करते हैं। माँ का चार बच्चे होंगे पर एक में ज्यादा मोह होगा तो क्या करेंगी, उसके लिए खाना स्पेशल रख देंगे, उसके लिए स्पेशल खरीदारी करेंगे। ओम शांति। तो हम बोल बताते रहे थे कि मोह होता है तो विशेष खातरी करते हैं उसकी, उसके लिए चीज बचा के रखते हैं। टीचर का स्टूडेंट में मोह होगा, उनको नई नई मुरली देंगे, दूसरों को पुरानी मुरली। और मुझे याद आता है एक माता थी, उसका बच्चा अमेरिका गया और बच्चे को जलेबी अच्छी लगती थी, तो माँ कहे उस बच्चे को अभी अमेरिका में तो जलेबी नहीं मिलती होंगी, मैं कैसे जलेबी खा सकती हूँ। तो मुंह होता है तो जरा भी अलग होता है तो भी दुख होता है। एयरपोर्ट पर देखेंगे ना, कई बच्चे विदेश जाते हैं तो माँ बाप उनकी पढ़ाई के लिए इतना खर्च करते हैं, पर जब जाते हैं रोते हैं और याद करके करके रोते हैं, तो वियोग में दुख है। मर जाता है तो बात ही मत पूछो, उस बेहाल हो जाते हैं। और जिनका मुंह होता है ना, वो थोड़ा अपना हक जमाते हैं, तुम मेरे हो तुमको ये करना है, मैं कहती हूँ ये करना है ये करना है। तो माँ बाप है बच्चों को पढ़ाई के लिए फोर्स करेंगे, तुमको ये ही पढ़ना है, बच्चों को नहीं पूछेंगे तुमको क्या पढ़ना है। तो अभी मुंह को स्नेह में बदलो, ट्रस्टी बन के रहो। गृहस्थी है मेरापन, ट्रस्टी है बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी अलौकिक दृष्टि वृत्ति कर्तव्य रखो। मेरा है तो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। पर बाबा के बच्चों को मारेंगे पीटेंगे? फिर है लोभ। लोभ माना संतुष्ट नहीं, चाहिए चाहिए होता रहता है। और लोभी होता है, स्वार्थी होता है। वो दूसरों के लिए नहीं कुछ करेगा, कितना भी धन होगा ना, मनुष्य होगा, पैसा नहीं देगा। करोड़ाधिपति होगा, 505,000 दिया तो समझेगा मैंने बहुत दिया। और लोभी है, संग्रह करता रहेगा, नई चीज खरीदता रहेगा और पुराना भी जमा करता रहेगा, तो उसके कबट एकदम फुल होंगे। और लोभी है ना, लोभ होगा, धन का होगा, खाने पीने का होगा, वस्तु वैभव का होगा, तो अच्छा खाना मिला तो डबल खा लेगा, और अच्छा नहीं लगता है तो कहेंगे भूख नहीं है आज तो। तो जैसे बाबा ने कहते हैं ना, पाना था सो पा लिया, बाकी का क्या रहा। विनाशी चीज का लोभ ना हो। विनाशी चीज आज नहीं है, कल पुरानी होगी। आज फैशन है, कल दूसरा आ जाएगा फैशन में। इसलिए विनाशी चीज का लोभ नहीं रखो, अविनाशी चीज का लोभ रखो। भले बाबा से जितना खजाना लूट सको लूटो, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना लूटो, उसका लोभ बल रखो। फिर है गुस्सा, क्रोध। क्रोध का कारण क्या है? सहनशीलता की कमी, अधीर्य। और क्रोध का सूक्ष्म रूप क्या है? चिड़चिड़ापन। मूड खराब हो गया, अपसेट हो गया, और आर्ग्यू करता रहेगा, फोर्स दिखाएगा, बोलेगा ऐसे ऐसे फोर्स करके। या वो बच्चा, छोटा बच्चा क्या करेगा, धरती पर पांव जोर से करेगा, चाहिए चाहिए मुझे। तो यदि जो चीज चाहिए उनको नहीं मिलती है, क्रोध स्पेशली, बाबा कैसे, कामेशु क्रोधेशु, काम विकार की उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। और कई है वो क्या करेंगे, जिसके साथ क्रोध है ना, उसके सामने नहीं देखेंगे। जैसे देखा ही नहीं, या देखेंगे वो यहां से आता है तो वो वहां से चला जाएगा, कि सामने देखेंगे तो हेलो कहना पड़ेगा, ओम शांति कहना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा, दूर दूर भाग जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना शांति धारण करेंगे, सहनशीलता धारण करेंगे, धीरज धारण करेंगे, क्रोध ऑटोमेटिक छूट जाएगा। फिर है अलबेलापन। अलबेलापन भी सूक्ष्म विकार है, वो उससे भी संजो सूक्ष्म उसकी निशानी है। जो अलबेले होते हैं ना, वो ठीक ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, और फिर कहेंगे मैं तो भूल गया, और कई है कहेंगे उसको जो भी सोचना है सोचे, मैं केयर नहीं करता हूं। फिर बहाने बताएंगे, और जो अलबेले है अपना समय शक्ति धन फालतू गंवाते हैं, वैल्यू नहीं उनकी, और कहेंगे मैंने सोचा फलाना है ना वो काम कर लेगा, खुद नहीं करते हैं, दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना समय संकल्प धन सब बहुत वैल्यूएबल है, व्यर्थ गंवाएंगे तो समर्थ नहीं बनेंगे, इसलिए समर्थ बनना है व्यर्थ नहीं गंवाओ, उसकी वैल्यू समझो। फिर है सुस्ती। उत्साह नहीं, उमंग उत्साह नहीं तो सुस्ती है। और जो सुस्त होता है ना, उसको क्या है कहेगा मैं थक गया, और जिम्मेवारी अपनी निभाता नहीं, और उसको कंफर्ट चाहिए, आराम से बैठा रहेगा। तो इसलिए जो करेगा सो पाएगा, यदि सुस्त होकर बैठे रहेंगे, या जैसे आज भी बाबा ने कहा अमृत वेले सुस्ती आती है, उठते नहीं है, समझते सारा दिन योग तो करना ही है ना, कर्मयोगी है हम, तो सुस्त बन के सोए रहते हैं, तो फिर उनकी पूजा भी विधि पूर्वक नहीं होंगी, पुजारी भी सुस्त रहेंगे, जब उठेंगे तब मंदिर के दरवाजे खोलेंगे, टाइम पर नहीं खोलेंगे। इसलिए चुस्त बनना है, उमंग उत्साह में रहना है। फिर नवा विकार है ईर्ष्या। क्या है कि जब स्वमान की कमी है, औरों की प्रशंसा हो रही है, औरों को प्यार मिलता है, औरों को सेवा मिलती है, तो ईर्ष्या आती है। और दादी प्रकाशमणि हमेशा कहती थी, ईर्ष्या के कारण सारा रामायण हो गया। कई कई को ईर्ष्या आई, मेरा भरत राजा गद्दी पर आए, राम ना आए, तो उस कारण सारी रामायण बन गई ना। तो क्या होता है कि आजकल सबको भेंट करने की आदत है, मुझे क्या मिला उसको क्या मिला। अपने भाई बहनों से भी ईर्ष्या हो सकती है कि माँ उसको ज्यादा प्यार करती है, उसका मोह उसमें ज्यादा है, या वो भाई बहन होशियार है या ज्यादा स्वरूपवान है, हो सकता है। तो भेंट करते हैं, मैं क्या हूँ वो क्या है। और कंपटीशन का भी तो आजकल बहुत है। यदि खुद इतना कॉम्पिटेंट नहीं है तो दूसरों के साथ ईर्ष्या होती है। तो बाबा हमें कितना सम्मान देता है। तो जब बाबा की बातें अपने दिल में रखेंगे, स्मृति में रखेंगे, तो स्वमान की कमी नहीं रहेंगी, और स्वमान में रहेंगे तो औरों से ईर्ष्या नहीं आएंगी, और भी नशा रहेगा। मैं कौन हूँ, किसका हूँ, मुझे बाबा ने कितना खजाने दिए हैं। और फाइनल दसवां विकार है घृणा, वैर भाव। तो जो वैर भाव होता है वो क्या करता है, उसकी निंदा करेगा और मारपीट भी कर सकता है, बदला लेने की भावना रहती है, और कायदा हाथ में ले लेता है। इंडिया में देखो, यदि किसी ने कार का एक्सीडेंट कर दिया और कोई को इजा हो गई या मर गया, तो पुलिस में नहीं ले जाएंगे। सब संगठन करके उसको मारपीट करके उसको भी वहीं ड्राइवर को मार देंगे। और जो वैर भाव वाला है वो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होंगी कि कोई उसकी प्रशंसा करता है, कहेंगे तुमको क्या मालूम है, वो तो ऐसा है, ऐसा है, इसने तो ये किया वो किया, तो उसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। और घृणा भाव है तो नेगेटिव दृष्टि रहेंगे, दृष्टि वृत्ति नेगेटिव, उसकी बदनामी ही करते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी सूक्ष्म विकार भी ना हो, मनसा भी सबके लिए शुभ भावना शुभकामना हो, जो हमारी निंदा करे उसको भी मित्र समझो, जो गाली देने वाले हैं उसको गले लगाओ। तो जितना बाबा को याद करेंगे, हमारे अंदर सिर्फ बाबा के लिए प्यार ना हो, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा के सब बच्चों के लिए प्यार हो, और जहां प्यार होगा वहां वैर भाव नहीं होगा, वहां ईर्ष्या नहीं होगी, वहां हम औरों को प्यार देंगे, सहयोग मिलेगा, उनको मान देंगे, हमें मान मिलेगा। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को आप समान, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनाना चाहते हैं। तो इसलिए अपने आप को देखना है, चेक करना है कि हमारे में कौन सी कमजोरी है, कौन से विकार हैं, कौन से गुणों की कमी है। तो बाबा से शक्ति लेके और अपनी दृढ़ता से कि मुझे करना ही है, तो हम कर पाएंगे और हम अपना जीवन ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बना सकेंगे। क्योंकि लक्ष्य सभी का क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। तो लक्ष्य सदा सामने हो, लक्षण आ जाएंगे। ऐसे नहीं बहानेबाजी करना कि अभी तो हम नए हैं, हम तो गृहस्थी है, गृहस्थी है, मुंह तो होना ही है ना, बच्चों में मुंह होता ही है। ये नहीं, अभी आपको ब्राह्मण समझना है। ब्राह्मण माना संपूर्ण पवित्र, गॉडली स्टूडेंट है, ट्रस्टी है। ये बुद्धि में रहने से स्टडी भी करेंगे और पढ़ाई के बाद जो बाबा ने बातें बताई है, डायरेक्शन दिया है, उसको अमल में भी लाएंगे। तो यहां से जितनी भी शक्ति जमा करनी है जमा करके जाओ और वहां जाके पुरुषार्थ अपना चालू रखना। ओम शांति। 5 मिनट बाबा की याद में रहे।